जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन
चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अभी बेलगाम से भी भक्त आए हैं, है ना? वाह, यानी बहुत बढ़िया, इतना कष्ट लेके किया है, हाँ, पूरा आर्टिस्ट है? समय लगा इसको करने के लिए? 2-3 दिन लग गए? देखो जैसे हम शहर में करते हैं ना, तो कंप्यूटर को उसको लगा के करते हैं, उसमें समय कम जाता है उसको कंप्यूटर में करने के लिए। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये बाहर का तकनीकी ज्ञान कितना अच्छा है, फटाफट हो जाता है, परंतु बीच में कंप्यूटर खराब हो जाता है, कभी कुछ बिजली नहीं रहता है, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ समस्या हो जाती है। पुराने ढंग से करने से समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें कला ज़्यादा है। कंप्यूटर में कला क्या है? कला की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कष्ट लगता है, समय लगता है, परंतु दिखने में बहुत सुंदर होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग वो स्क्रीन वीन लगा के कंप्यूटर का नहीं करना चाहते ना गोकुलधाम में, इसलिए यही सबसे बढ़िया है। तो आज हम लोग एक शिविर करेंगे और विषय होगा वाणी की संस्कृति। वाणी मतलब बोलना, माना बोलना। सब लोग बोलते हैं ना, तो ये वाणी की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। तो अभी प्रसाद तक, सुबह के प्रसाद तक जितना हो सके उतना करेंगे, उसके बाद सबका प्रसाद हो जाने के बाद फिर से मिलेंगे और दोपहर के भोजन प्रसाद तक करेंगे। फिर समय लगे तो उसके बाद भी करेंगे, नहीं तो देखेंगे कैसे होता है। सेवा का विभाजन सब हो गया है हाँ? सेवा अभी किचन के भक्त भी आ गए इधर,
भूख लगा के आ रहे हैं, लास्ट का थोड़ा सा 5-10 मिनट का सेवा।
अच्छा, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि इस क्लास में सारे भक्त होने चाहिए।
दोपहर को तो रहेंगे सब लोग, सुबह से थोड़ा सा समाप्त करके।
हाँ, फिर भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि भागवतम क्लास में और इसमें सब में होना चाहिए सबको। और केवल पुजारी एक है जिनको भोग लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी थोड़ा जल्दी करके 7:45 बजे भोग लगा के तो आ सकते हैं। तो किचन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आई तो अच्छा, तो फिर अगला श्लोक लगा सकते हैं, हर बार वो करना पड़ेगा ना, तो अच्छा खासा कसरत हो जाएगा आज। चलो गोकुलधाम में आने का थोड़ा ये भी फायदा हो गया। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। जब श्री कृष्ण भगवद गीता में 2 अध्याय में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बात करते हैं ना, तो फिर अर्जुन का ये प्रश्न होता है, 2:54 का श्लोक, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है? आप सब भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से विद्वान हैं सब लोग। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित मतलब क्या है? एक स्थिरता की बात। प्रज्ञ बुद्धि, चेतना, ज्ञान है ना। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। किसमें स्थिर होना?
आत्म साक्षात्कार में
स्थिर होना, आध्यात्मिक स्तर में स्थित होना। हरे कृष्णा आदि रस्ते देखो, सुबह भर सेवा कर करके हमारे अन्नदाता, हरे कृष्णा, यह गोकुलधाम का जीवन में खुशी से सेवा करना, प्रसाद लेना, क्लास जब। तो जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि अध्यात्म में स्थिर है, जो आत्मा में जिसकी बुद्धि है शरीर में नहीं है, स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि शरीर में स्थित है वो कभी स्थिर नहीं हो सकता है, सही है ना। स्थिरता कब आएगी वास्तव में, जब किसी स्थिर वस्तु में हमारी बुद्धि मग्न रहेगी। जब किसी अस्थिर विषय में हम मग्न रहेंगे तो हम भी अस्थिर होंगे, है कि नहीं। तो हमको स्थिरता यदि चाहिए तो किसी स्थिर वस्तु में चित्त को मग्न करना चाहिए। बहुत सरल बात है कि नहीं। असत ग्रहात प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, किसी को श्लोक मालूम है? असुर वर्य देहि नाम, कौन सा श्लोक?
तस्साधु मन ने असुर वर्य देहि नाम सदा समुग्न दिया असत ग्रहात त्वा पातम गृह अंधकूपम वनम गतो आश्रयत।
कहाँ वनम गतो, किसका आश्रय? हरिम आश्रय, सबसे महत्वपूर्ण शब्द। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना, हे असुरवर्य, प्रहलाद अपने पिता से कह रहे हैं कि हे असुरों में से श्रेष्ठ, मैं ये ऐसे समझता हूं कि जिस व्यक्ति को देह प्राप्त हुआ है, देहिनाम, जो जिन लोगों को देह प्राप्त हुआ है, तो उनका क्या है? तत्साधु मन्य, मैं ऐसे उनके लिए ठीक समझता हूं, सदा समुद्विग्न धिया असत ग्रहात, जो देहात्म वाले हैं, जिनको देह मिला है, भौतिक देह, सदा उद्विग्न, समुद्विग्न, उद्विग्न मतलब क्या है?
विचलित।
और समुद्विग्न मतलब पूरी तरह से संपूर्ण रीति से विचलित रहते हैं, सदा। ऐसे नहीं कि थोड़े समय उद्विग्न रहते हैं, थोड़े समय नहीं रहते, हमेशा उद्विग्न रहते हैं, पूरी तरह से उद्विग्न हमेशा रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसे उद्विग्न, ऐसे चिंतित विचलित क्यों रहते हैं? असत ग्रहात, क्योंकि उन्होंने असत को ग्रहण कर लिया है। और असत क्या होता है? जो सदैव परिवर्तनशील है, हमेशा जो बदलते रहता है, वो असत है। सत क्या है? जो कभी नहीं बदलता है, जो शाश्वत है, अविनाशी है। परंतु जो भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नश्वर है। क्षणभंगुर का क्या मतलब है? किसी भी क्षण भंग हो सकता है और होगा। तो इसलिए जब चित्त हमेशा ऐसे वस्तुओं में, ऐसे स्तर में रहता है जहाँ सब कुछ बदलते रहता है, सब कुछ विनाश, जन्म होता है, विनाश होता है, बीच में भी परिवर्तित होते रहता है, तो चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जब कोई चीज एक स्थिरता में रहती है ना, तो फिर मन भी स्थिर हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन भी में भी देखते हैं, कभी कभी ब्रह्मचारी आश्रम में भक्त लोग भी थोड़ा कभी कभी शिकायत करते हैं, अरे हमको एक सेवा दो ना, हम स्थिर रह के कुछ करेंगे तो अच्छा, हर दिन कुछ बदलते रहोगे हमारा सेवा, आज ये करो कल वो करो, मन स्थिर नहीं रहता है। ऐसे होता है ना कभी कभी। तो वैसे गाय वगैरह होते हैं ना, ऐसे पशु जो सात्विक पशु होते हैं, वो संतुलन प्रिय प्राणी होते हैं, स्थिर, उनको स्थिर जीवन चाहिए। उनका दिनचर्या बदलते रहोगे ना, वो विचलित हो जाते हैं। एक बार उनको एक जगह में ले गए, वो जगह में वो खुश है। सही समय तो उनको ले जाओ बाहर, जगह जगह लेके फिर से वही समय पे लेके आओ, वही उनकी दिनचर्या रहती है, उनको मन स्थिर रहता है। उनको बदलते रहोगे, कभी सुबह में ले गए, कभी दोपहर में ले गए, कभी नहीं ले गए, कभी कुछ किया, तो विचलित हो जाते मनुष्यों का भी ऐसे ही। तो सबसे स्थिर क्या है? अध्यात्म। सतोगुण भी स्थिर है, लेकिन वो भी भौतिक होने के कारण पूरी तरह से स्थिर नहीं है। यहाँ पे भौतिक जगत में सत्व में रजो और तमो का मिश्रण भी होता है, इसलिए जो वास्तव में स्थित प्रज्ञ है वो अध्यात्म में स्थिर रहता है। तो अभी जब श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा स्थित प्रज्ञ बनो इत्यादि, तो स्वाभाविक है कि अर्जुन का प्रश्न होगा कि स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे पहचानना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ कौन है। कोई भी आदमी बोल सकता है मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, क्योंकि भारत में बहुत लोग होते हैं उनको भगवद गीता के बारे में बताने जाते हैं, बोलते हैं हाँ मैं कृष्ण को जानता हूँ, लेकिन क्या वो कृष्ण को जानते हैं? क्या वो जानते हैं कि कृष्ण को जानने का मतलब क्या है? नहीं जानते हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को, इस श्लोक का कौन बोलेंगे? एक जैसे हम भागवत क्लास में बोलते हैं वैसे बोलिए।
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा,
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा,
समाधिस्तस्य केशव,
समाधिस्तस्य केशव,
स्थितधि किं प्रभाषेत,
स्थितधि किं प्रभाषेत,
किमासीत व्रजेत किं,
किमासीत व्रजेत किं।
और कोई?
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा,
समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्।
अच्छा, इसका अनुवाद पढ़िए जिसके पास भगवद गीता है, थोड़ा जोर से। हाँ यहाँ भी है, ठीक है, पढ़िए कोई जोर से।
अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है?
तो ये श्लोक से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं, बराबर। तो देखिए, हर जब आध्यात्मिक विषयों की बात आती है, अक्सर ये देखा जाता है, हर समय नहीं लेकिन अनेकों बार, कि किसी भी श्लोक का एक बाह्य अर्थ होता है और एक आंतरिक या गुह्य अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ क्या पूछ रहे हैं? स्थित प्रज्ञस्य मतलब स्थित प्रज्ञ के संबंध में का भाषा, उसकी भाषा कैसी है? समाधिस्थस्य केशव, जो स्थित प्रज्ञ कैसे होता है? जो समाधि में स्थित होता है। हे केशव, समाधि में स्थित होने वाले स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसे होती है? और स्थित धी, जो इस तरह से स्थित है, जिसकी धी, जिसकी बुद्धि ऐसे स्थित है, किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम, तो उसकी भाषा कैसे होती है? वो कैसे बोलता है? वो कैसे बैठता है? कैसे चलता है? तो ये एक बाह्य अर्थ है, साधारण अर्थ। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, बाह्य अर्थ भी महत्वपूर्ण है। अब किस तरह से बैठता है, चलता है, तो केवल बाह्य अर्थ से देखेंगे तो शायद स्थित प्रज्ञ को हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए श्रील श्रीधर स्वामी ने इसका वास्तविक आंतरिक अर्थ दिया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यहां भाषा शब्द का तात्पर्य केवल भाषा नहीं है, इसका अर्थ है कि उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं उनको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भाषा शब्द का तात्पर्य। फिर किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत का मतलब है कि वो कैसे बात करते हैं, परंतु श्रीधर स्वामी बताते हैं कि न केवल वो उसकी वाचा कैसे होती है, परंतु अंदर भी सोचने की वृत्ति क्या होती है, और साथ साथ जब कोई परिस्थिति होती है, चाहे सुख की परिस्थिति, दुख की परिस्थिति, उसका उसको सम्मान मिले या वो अपमानित हो जाए, या उसकी कोई प्रशंसा करे, उसकी कोई निंदा करे, तो उस किस तरह से व्यवहार करता है, उसका वो कैसे प्रतिकार करता है। तो दूसरा कोई उसके ऊपर क्रोध करता है, दूसरा कोई प्रेम से बात करता है, तो किस तरह से वो व्यवहार करता है। तो ये प्रभाषेत शब्द का अर्थ है, आंतरिक अर्थ। और फिर किम आसीत, आसीत मतलब बाह्य अर्थ है कि कैसे बैठता है, परंतु श्रीधर स्वामी बतलाते हैं किम आसीत का मतलब है कि कैसे अपने इंद्रियों को वश में करता है। इंद्रियों का कभी कभी हम प्रयोग करते हैं, कभी कभी उसको वश में रखते हैं। जैसे कभी कभी भूख लगी होती है, जैसे अभी हो सकता है कि हम में से किसी को थोड़ा भूख लग गया हो, फिर भी अभी हमको पता है कि हम अभी नहीं खा सकते, बैठना पड़ेगा हमको इधर, है ना। तो वश में कर लिया है, और वश में करके हम दूसरों को दिखा नहीं रहे हैं कि हमको तकलीफ हो रहा है भूख का, हो सकता है पेट में कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरों को हम दिखा नहीं रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे हैं, थोड़ा देर अभी वो भूख को सहन करना पड़ेगा हमको। किम आसीत, आसीत बैठने का यहाँ मतलब है कि कैसे इंद्रियों को थोड़ा वश करके रखा है। व्रजेत किम, कैसे चलते हैं वो, मतलब कैसे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जब खाने का समय आता है तो क्या खाता है व्यक्ति, कितना खाता है, कैसे खाता है, क्या वो सब जानवरों को खाता है कि सात्विक आहार खाता है, वो कम खाता है, ज़्यादा खाता है, कैसे खाता है, कितना खाता है। तो एक है कि इंद्रियों को वश में कैसे करना, कैसे करता है, और दूसरा इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता है, क्योंकि इंद्रियों के प्रयोग किए बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है, है कि नहीं बराबर। जितना भी वैरागी आदमी क्यों ना हो, उसको थोड़ा तो इंद्रियों को प्रयोग करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो खाना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ तो इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा। इंद्रियों को तुष्ट किए बिना ये जीना संभव ही नहीं है, तो इंद्रिय तृप्ति को शून्य करना संभव नहीं, परंतु किस तरह से इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ जो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, तो इसमें तात्पर्य जरा पढ़ लेना। कौन पढ़ेंगे जोर से, जिसका आवाज बुलंद है ना, नहीं भी है तो अभी सब लोग सुन सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। कौन पढ़ेंगे,
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, इसी प्रकार कृष्ण भावना वाले पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है।
एक मिनट जाने दो। अच्छा ऐसे करो, आप सबको सुनाई दे रहा है क्या, वो क्या पढ़ रहा है पीछे सुनाई दे रहा है। अच्छा ऐसे करो, वल्लभ ने थोड़ा खड़े को पीछे घूम के पढ़, ताकि आवाज उस तरफ जाए, सब लोग सुन सके, खड़े होकर थोड़ा सब लोग देखेंगे, हाँ सुन पाएंगे।
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना वाले पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोगों के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या किसी
या फिर विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है।
एक वो वाक्य है, वो फिर से पढ़ना, जब बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण व्यक्ति का है बोलना, कैसे बोलता है।
किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना वाला व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
वाणी ही पढ़ो,
वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
वाणी ही, सब लोग हम पीछे पीछे बोलेंगे, बोलो।
वाणी ही
किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमारे कितने सारे गुण होते हैं ना, लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं?
वाणी।
वाणी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, हाँ, तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वाणी। सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रभुपाद जी बोल रहे हैं व्यक्ति का। तो लक्षण तो हर एक के होते हैं ना, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि जैसे एक रोगी व्यक्ति है, तो रोगी व्यक्ति के लक्षण होने चाहिए ना, जिसे हम पहचान सकें कि ये रोगी है। कोई बलवान व्यक्ति है, कोई लक्षण होने चाहिए जिससे हम जान सकते हैं कि ये बलवान है। कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई गरीब है, तो जो भी गुण होते हैं व्यक्ति के, तो उसके कोई लक्षण होने चाहिए। तो जिस प्रकार से धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, हर एक के कोई ना कोई लक्षण होते हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक उसी तरह से एक स्थित प्रज्ञ को या एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कोई ना कोई लक्षण होने चाहिए। और उन लक्षणों में से वो उसकी जो वाणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जितने भी गुण होते हैं उनमें से वाणी से उसको पहचाना जा सकता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमारे लिए वाणी कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारा ये विषय क्या है शिविर का? वाणी की
संस्कृति।
तो ये संस्कृति शब्द क्या है? साधारण शब्द में हम संस्कृति की बात करते हैं ना। दशराज गोपाल प्रभु, तो साधारण शब्दों में संस्कृति क्या है, इसकी परिभाषा यह एक साधारण शब्द
महाराज, ये हिंदी का संस्कृति कल्चर का नहीं था,
मतलब नहीं, इसके पहले भी है ना, ये है इधर, ये कहाँ गए, इतने सारे हैं, तीन और हैं।
वो मतलब इंग्लिश का नहीं किया था, कल्चर का।
क्यों? सबका ट्रांसलेशन करने के लिए बोला था ना, क्यों मिस क्यों किए कर दिए बीच में सब ट्रांसलेशन का, छोड़ क्यों दिए थोड़े?
हाँ, अनिल ने कहा
माता महाराज की वो संस्कृति के ऊपर लेंगे तो हिंदी वर्ड यूज करेंगे ऐसे कहा था तो।
हाँ, लेकिन ये तीन स्लाइड्स है ना, तो तीन स्लाइड्स में उनको भी ट्रांसलेट करना था ना, जैसे है वैसे ट्रांसलेट करने के लिए बोला था। खैर कोई बात नहीं, किशोर प्रभु है क्या इधर? नहीं ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। तो इसको थोड़ा भी रहने दो थोड़े समय के लिए। लेकिन संस्कृति, हम वाणी की संस्कृति बोलते हैं ना, तो प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि भक्ति की संस्कृति सारे दुनिया में फैल जाए, बराबर। तो ये संस्कृति शब्द से हम परिचित हैं, परंतु संस्कृति अंग्रेजी में कल्चर बोलते हैं, तो संस्कृति मराठी हिंदी कन्नड़ा में भी संस्कृति बोलते हैं ना। तो हम जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या मन में चित्र आता है, क्या इसका मतलब है, अर्थ क्या है? हाँ,
कोई भी एक चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए एनवायरमेंट फैसिलिटेट करना, जैसे
हिंदी में बोलो मराठी में बोलो,
जैसे दही दूध में हम दही का एक कण डालते हैं।
नहीं नहीं, साधारण एक साधारण शब्द में हम जब कल्चर की बात करते हैं ना, संस्कृति, साधारण बात करते लोगों से, उस समय हम इतने गहराई में नहीं जाते ना, एक साधारण अर्थ संस्कृति शब्द का। हाँ,
साधारण उसमें संस्कृति में मतलब कैसे हम रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या ऐसे बातचीत करते हैं, क्या हमारी दिनचर्या रहती है, क्या हमारे लक्ष्य हैं जीवन के, तो सब उसमें आ जाता है।
एक वातावरण,
वातावरण ठीक है,
व्यक्ति का जीवन शैली,
ठीक है,
उनका आचार विचार और व्यवहार,
आचार विचार व्यवहार, ठीक है, बहुत अच्छा, ये सब इसमें आता है। तो संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या आता है, विशेष विशेष रूप से क्या क्या आता है, जैसे हम क्या खाते हैं, जैसे अभी कोई लोग जंगल में रहते हैं वो क्या खाते हैं, वो जानवरों को मार के, पक्षियों को मार के, ऐसे कभी कच्चा खाते कभी वो खाते, उनका संस्कृति ऐसे है। और जो कृष्ण भक्त है वो क्या करते हैं, शुद्ध शाकाहारी कुछ लेते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पण करके फिर लेते हैं। इसमें भी एक संस्कृति, जब पता उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं ना, कि भोजन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है भोजन का, फिर दूसरा है वस्त्र, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, तो जो राजसिक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कोई तामसिक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। राजसिक वस्त्र मतलब क्या, एकदम चमक धमक वाले फैशन है ना, सबको आकर्षित करने के लिए, है कि नहीं, इसको ये राजसिक वस्त्र होते हैं, बराबर। तो तामसिक कैसे होते हैं वस्त्र,
गंदे
फटे हुए
बासी पुराने
पुराने बदबू आने वाले सब वस्त्र। आजकल मैं देखता हूँ कि कई सालों से फैशन एक आया फटे हुए कपड़े पहनने, देखा है हा? पहले पहले जब मैंने देखा था मैंने सोचा था यार ये इतना अमीर लड़का लगता है क्यों ऐसे पहनता है, फिर मुझे पता चला कि ऐसे भी फैशन हो गया है। जगह जगह फटे हुए उसको जानबूझ के फाड़ते हो, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कपड़े थोड़ा फट गया ना तो अरे अरे फट गया दिखना नहीं चाहिए, कुछ सिलाई करवा के कुछ करवा के करते थे कुछ अभी, तो जानबूझ के फाड़ते हैं और ये थोड़ा फैशन हो गया अभी, जानबूझ के बाल भी ना ऐसा ऐसा करके जाते हैं वो, मतलब पंगे वंगे मार के नहीं जाते, जानबूझ के कैसा तो वो ऐसा ऐसा वो दिखना चाहिए वो बाल। पहले क्या करते थे सब लोग, पंगे वंगे लगा के बाल ऐसा ऐसा करके जाते थे ना, तो बाहर जाना है तो ये लोग बाहर जाना है तो बाल ऐसे 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 करके सब जाते थे। तो ये आधुनिक काल में रजोगुण और तमोगुण का की प्रधानता इतनी बढ़ गई है और आजकल तो बालों का फैशन का कोई बात ही नहीं। ये बेलगाम में भी आ गए, मैंने देखा है वो लड़के, इधर में बाल रखेंगे इधर में उसको काट देंगे देखा है अभी ये तरुण लोग अभी मोटरसाइकिल में जाते हैं, वो तीन तीन लोग बैठ के जाते हैं, इधर काटेंगे बाल इधर बाल रखेंगे ऐसा करके। तो विदेश में तो मैंने बहुत देखा है, रंग बिरंगी बाल होते हैं इधर लाल पीला हरा ऐसा करके वो लोग भी करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे वो उसके ऐसे करके बाल लगते हैं कितना पैसा खर्च करते हैं इसके ऊपर और कितना समय बर्बाद करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद भी सुंदर नहीं लगते वो ठीक है पैसे खर्च करो तकलीफ उठाओ कुछ भी करो लेकिन बाद में कुछ दिखना चाहिए ना अच्छा। तो आजकल जिस तरह के उनको सौंदर्य का एक जो कल्पना है वही बदल गई। तो इस तरह से लोगों के वस्त्र कैसे होते हैं तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। और आजकल तो विदेश में मैंने देखा ऐसे ऐसे तामसिक वो करते जीव में वो उसको डाल के उसका कोई ये रहता है आभूषण होता है जीव में से ऐसे करके जीभ में डालते हैं फिर कान में से नाक में से ऐसे डाल के उसमें से निकालते हैं इसमें से बीच में निकालते हैं। पहले केवल माता जी लोग इधर उधर इधर सब पहनते थे वो अभी ये लोग भी पहनते हैं लेकिन कैसे उस पर अंदर से छेद करके इसमें छेद करके अधर में से छेद करके ऐसे सब विदेश में मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी के लोग जो है ना ऐसे करते हैं। वो क्या ऑपरेशन करके करवाते हैं कैसे करवाते हैं इसके अंदर से खाते कैसे हैं क्या करते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत सुंदर है, हमको देख के वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने किया होगा ऐसा है ना। तो ये भी उनकी संस्कृति है उनका कल्चर ऐसे है उनको लगता है कि यही है। तो वस्त्र है भोजन है और क्या आता है संस्कृति के अंदर
भाषा
वो कैसे भाषा बोलते हैं देखो जो सुसंस्कृत व्यक्ति की भाषा कैसे होती है और एक बिल्कुल जो असभ्य व्यक्ति है उसकी भाषा कैसे होती है। आजकल बाहर हम क्या देखते हैं लोग कैसे बात करते हैं अरे तूरे करके करते हैं कि नहीं और आजकल गाली दे के बात करना इतना सामान्य हो गया है हर एक व्यक्ति गांव में जाओ शहर में जाओ और आजकल के युवा पीढ़ी तो क्या बोलना उसके बारे कोई गाली बोलने के बजाय बोलते ही नहीं बात ही नहीं करते और ये फैशन हो गया ऐसे बात करना है ऐसे नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे ये पिछड़ा हुआ आदमी। तो गाली गलौज तो करना ही करना है भले उसमें कोई ज़रूरत हो। पहले क्या होता था कि केवल गुस्सा हो जाए ना आदमी तो तब वो गाली कुछ बोल देता था अभी आजकल खुशी में भी गाली देते हैं कोई अच्छे कोई कारण नहीं भी हो गाली का शब्द इस्तेमाल करते हैं। विदेश में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और भारत में भी ऐसे पूरा आ गया है तो एक संस्कृति आ गई है ऐसे बात करना। बिना वजह ट्रेन में भी हम जाते हैं मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी भी था मैं ट्रेन में जाता था लोग बैठे होते हैं ना वो देखते नहीं सामने कोई साधु बैठा है क्या है उनके बात ऐसे ही गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करके बात करेंगे। माताजी लोग भी आजकल बोलते हैं। एक बार क्या हुआ जब मैं नया ब्रह्मचारी था ना तो एक गृहस्थ भक्त थे वो मंदिर में आते थे उस समय मैं मंदिर का अध्यक्ष था तो वो प्रभु जी आते थे मंदिर में बेचारे वो वकील थे वो भक्त बन गए तो उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि ये भक्त बने करके तो क्योंकि उनको लगा कि ये घर छोड़ के जाने वाले, तो हमने भी और अन्य गृहस्थ भक्तों ने भी उनको बहुत समझाया, ऐसे नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते हैं, वो आपके साथ में रहेंगे, व्यवसाय घर संभालेंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन वो नहीं मान सके। फिर एक बार घर में उनका कुछ झगड़ा हुआ होगा तो ये व्यक्ति आश्रम में आ गए, हाँ ऐसे मतलब मंदिर में आ गए, तो उनकी पत्नी आई और ऐसे हंगामा किया उन्होंने मंदिर में आके, और ऐसी ऐसी भाषा बोली, मैंने आज तक किसी माता जी को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना था। उनके बड़े लड़के बच्चे थे, हाँ ऐसा नहीं कि वो एकदम तरुण थे, उनके बच्चे कोई कॉलेज में पढ़ते थे, ये उम्र के थे वो। वो माता जी ने ऐसे बोलना शुरू कर दिया, मैं तो बैठ ही गया उधर। मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसे भी शब्द ये बाहर के गुंडों से सुना, वो सुनते थे हम लोग, लेकिन माता जी लोग ऐसे भाषा बोली, फिर हमको समझ में आया कि इनका परिवार में ऐसे ही कल्चर है इनका। हाँ हम किसी व्यक्ति के भाषा से उसके परिवार के ऊपर भी अनुमान लगा सकते हैं, उसका कुटुंब कैसा है। ये घर में भी ऐसे ही बातचीत करते थे, उसमें घर में इनका घर में ऐसे बातचीत, बच्चों में भी प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये बच्चे लोग भी बड़े होते होते ये भी ऐसे ही बात करेंगे ना। तो भाषा और क्या है संस्कृति का गुण? रहन सहन मतलब, हाँ कैसे घर के अंदर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और विशेष रहन सहन तो बहुत बड़ा विषय हो गया।
कला
मतलब
व्यवसाय
मनोरंजन कैसे उनका होता है। एक सात्विक व्यक्ति सुसंस्कृत व्यक्ति का मनोरंजन कैसे होता है, एक असभ्य व्यक्ति का मनोरंजन कैसे होता है, किस चीज में व्यक्ति आनंद लेता है। जैसे संगीत, एक सभ्य व्यक्ति का संगीत कैसे, असभ्य व्यक्ति का संगीत कैसे, तामसिक संगीत, राजसिक संगीत, सात्विक संगीत, दिव्य संगीत। अब आप लोगों को इतना पाश्चात्य संस्कृति का इतना शायद जानकारी नहीं होगा, आजकल के इसमें आ भी गया होगा, लेकिन जो आजकल की संगीत है वो क्या है, सात्विक है क्या, कैसे है, राजसिक और तामसिक। केवल चिल्लाना और तरह तरह के धम 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 करके, कितनी बार हम देखते हैं लोग इसमें जाते हैं मोटरसाइकिल रिक्शा धम 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 करके बजाते जाते हैं। मैं रात को हर रोज 8:30 बजे सैर करने के लिए निकलता हूँ, क्योंकि ये कोरोना की वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, रात को थोड़ा कुछ हवा चाहिए इसलिए मैं रात को निकलता हूँ। तो कोई ना कोई एक ब्रह्मचारी मेरे साथ में रहते हैं। तो 2 दिन पहले मैं गया तो ये एक लड़का उसमें उसका फ़ोन पे उसने कुछ वो बजाया था, ढुक ढाक ढुक 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 वो वाला सब बजाया था, और स्पीकर भी लेके जा रहा था सब। तो मैंने उसको डांटा बहुत, सहन नहीं हुआ, अरे रात के शांति में थोड़ा शांति हुए, ढक ढक ढक, अरे तुम सुनो ना, तुमको चाहिए तो तुम स्पीकर पे सुनो। वो भी रिक्शा में भी देखो, गाड़ी में जोर से बजा के जाते हैं, उनको क्या मनोरंजन होता है उसमें, क्या उसको इतना आवाज इतना। हाँ तो आजकल की संस्कृति किस तरह से बढ़ रही है देखो, पहले लोग भी सुनते थे, कैसे सुनते थे, शास्त्रीय संगीत सुनते थे, भजन वगैरह सुनते थे, ये पहले के ज़माने की संस्कृति थी मनोरंजन के लिए भी। अभी आजकल की संस्कृति कैसे आ गई, राजसिक और तामसिक भी। एक बार जब मैं विदेश में था तो किसी व्यक्ति ने बताया कि एक अमुक प्रकार की संगीत शुरू हो गई, बहुत साल पहले की बात है, उसमें क्या करते हैं, एक ऐसे बोर्ड होता है ना जो पाठशाला में होता है काला, उसमें वो शिवाजी महाराज ने कैसे वो नाकुए पहने थे ना, वो क्या अफजल पहनते उसको, तो ऐसे लेके इसके ऊपर कर कर करके आवाज करना, उनका वो संगीत सत्य है। फिर बीच में ढाक 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 करेंगे, फिर ऐसे आवाज करेंगे, उसको सुनना भी नहीं होता है। तो किस तरह से संस्कृति का पतन हो रहा है, पहले दिव्य संस्कृति, फिर सात्विक, फिर राजसिक, तामसिक, हर क्षेत्र में, तो चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे भाषा हो, चाहे मनोरंजन हो, फिर कला जो बताई, जो आर्ट ऐसे सब है, जो अभी चित्र है, शिल्प कला है, इसमें भी देखो कितना परिवर्तन। पहले के ज़माने के जो सिनेमा होते थे ना, हम जो बचपन में, हमको याद है हमारी दादी हमको ले जाते थे, हमने देखा भक्त प्रहलाद करके चित्र पर ये सिनेमा था, तुकाराम, संत तुकाराम बोल के एक सिनेमा था हमारे बचपन में, तो हमको हम देखे जाते थे। कभी कभी कुश्ती के लिए भी हमको ले जाते थे, हमको कोई वो कुश्ती पहलवानों का होता था, वो भी हमको हम देखते थे उस समय। लेकिन कुश्ती भी ठीक है, चलो समझ सकते हैं, लेकिन आजकल जिस प्रकार का ये मनोरंजन आदि होता है उसको क्या बोलना। तो खैर ऐसे ये सब चीज़ें हैं, हमारा साहित्य कैसे है, हमारे संबंध आपस में कैसे हैं, हमारे व्यवहार कैसा है सबके साथ में, इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति की संस्कृति कैसी है। तो संस्कृति शब्द में ये सारे चीज़ें आ जाते हैं, तो हमारे विचारधारा क्या है, हमारे परंपराएं क्या हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या टाइम हो गया, अभी
9 बजे।
तो प्रसाद का कब करना है, अभी करेंगे ना 9 बजे। तो ठीक है, ये संस्कृति का एक करके हम जाएंगे, फिर वापस में आके वाणी का करेंगे। अच्छा, ये संस्कृति, इसके दो भाग है, कृति और सम, इनको जोड़ के क्या होता है, संस्कृति। तो कृति का मतलब क्या है,
कार्य,
कृ, कृ धातु से आता है, कोई चीज को करना, क्रू, क्रू ने, ठीक है, क्रू कैसे आ गया, क्री धातु, कुछ ऐसे कर दो और वो उपकरण निकाल, वो नहीं नीचे वो काट दो, बाकी लोग काट दो। हाँ, क्री, क्री या मराठी गुजराती में क्रू बोलते हैं, री अनुस्वर है ना, स्वर, स्वर में मराठी में रू बोलते हैं, उत्तर भारत में री बोलते हैं, अमृत और अमृत, ये फर्क होता है। क्या क्री, क्री मतलब कृति, और सम मतलब, उसको भी बाद में देखेंगे, जैसे संकीर्तन होता है ना, तो पूरी तरह से करना, जो अच्छी तरह से करना है, सम। तो जिसके जिससे एक संपूर्ण कार्य हो सके, बहुत अच्छा इससे परिणाम निकल सके उस कार्य से, वो है संस्कृति। तो दो प्रकार के कृति है, जैसे यहाँ कृ सही किया ना, इधर यहाँ सही लिखा है कृति। तो तीन प्रकार के कृति होते हैं, प्रकृति, संस्कृति, विकृति। तो प्रकृति का मतलब है किसी मूल मूल विषय, मूल स्वभाव। संस्कृति मतलब किसी का शुद्ध, किसी की शुद्ध अवस्था। और विकृति मतलब उसकी अशुद्ध अवस्था, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास कोई गेहूं है, ठीक है, थोड़ा नमक है और पानी भी है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, उसको मिला के अच्छा चपाती रोटी आखिरी कुछ बनाते हैं, ठीक है। और बना के उसको तवे पे उसको करके बढ़िया एकदम गरम गरम फिर फुलका आदि सब खाते हैं, ठीक है। और यदि वही फुलका यदि पूरी तरह से जल गया, काला काला होके जल गया, उसको नहीं खा सकते, बिल्कुल स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, तो अभी वही ये जो चपाती है भाकरी है जो भी है, अपने मूल अवस्था में क्या है, केवल गेहूं है, थोड़ा नमक है, थोड़ा पानी है, ये उसकी प्रकृति है। जब उसको मिला के सही तरह से उसको तवे पे रख के उसको चपाती के रूप में किया जाता है, तो वो उसकी संस्कृति है। और जब वो पूरी तरह खराब हो जाता है, जल जाता है, या फिर वो चपाती बहुत दिन का बासा बासी हो जाती है, वो चपाती 10 दिन रह के ऐसे ही वो कड़क कड़क बन के बन जाती है, हाँ, तो वो क्या होता है, विकृति, ठीक है। तो ऐसे तीन अवस्थाएं हैं किसी भी चीज के। जैसे भी कहीं पत्थर है, कोई पत्थर ऐसे ही पड़ा है, तो ये पत्थर जो है ये प्रकृति, क्योंकि उसका ये मूल अवस्था है। परंतु इसको कोई शिल्पकार लेके उसको शिल्पी करके सुंदर मूर्ति कोई बना सकता है, ठीक है, ये संस्कृति। और फिर कोई आके उस मूर्ति को तोड़ भी सकता है, चूर चूर बना सकता है, विकृति। इस तरह से हर हम यहाँ पे संसार में देखते हैं ये तीन अवस्थाएं होती हैं, जो मूल अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है। इसके बारे में कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण भी हमने दिए। तो हर चीज के का विश्लेषण जो है ये इन तीन प्रकार की चीजों से किया जा सकता है। हाँ ठीक है, हर चीज का विश्लेषण इन तीन शब्दों के अनुसार किया जा सकता है, उदाहरण व्यवहार, भोजन, सृजन, भाषा, भाषण, पूजा आदि। तो कोई उदाहरण दे सकते हैं? अभी हर एक का देखिए, व्यवहार
एक एक छोटा बच्चा जब अपने माता पिता से या फिर समाज से व्यवहार करता है तो उसका मूल प्रकृति समझ में आता है, लेकिन उसको फिर बाद में पाठशाला या फिर गुरुकुल में भेज के उस प्रकृति को संस्कृति में बदला जा सकता है। या फिर यदि वो पाठशाला या गुरुकुल नहीं जाए और बुरे संग में गिर जाए तो फिर वो विकृत हो जाता है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर भोजन,
जो फल है कंदमूल है, फूल वगैरह, उस सात्विक काइंड में आता है, मतलब उस आता है सात्विक में। और जो तला है ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मसालेदार है, तो राजसिक है, और मांस मच्छी है तमोगुण, तामसिक।
हाँ, ये बराबर है, परंतु संस्कृति विकृति प्रकृति के दृष्टिकोण से कैसे विश्लेषण करना है? हाँ, उनका
एक कोई तो फल है महाराज, वो उसका मूल स्वभाव प्रकृति है। अगर उस फल को हम खाने के लिए यूज करेंगे, अच्छे से सर्व करेंगे अच्छे से, तो संस्कृति हो जाएगा, और उसको मतलब
सड़ जाए
मारने के लिए ऐसा वगैरह
वो फल जब सड़ जाएगा ना, क्या खा सकते हैं उसको? सड़ने के बाद फल को नहीं खाया जा सकता है ना, लेकिन फल जब ताज़ा रहता है उसको क्या करना चाहिए? काट के भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। संस्कृति प्राकृतिक अवस्था में है फल, परंतु उसको भगवान को अर्पण करें, संस्कृति हो जाएगा। फिर ऐसे रखेंगे वो बासा, वो सड़ गया फल, नहीं खा सकते। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र में ये प्रकृति विकृति संस्कृति। तो अभी संस्कृति शब्द का और आप अनुमान लगा पा रहे हैं ना? जब हम वाणी की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वाणी की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन संस्कृति को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं रिफाइन, शुद्धिकरण। संस्कृति का मतलब है शुद्धिकरण या उन्नत अवस्था में लाना किसी को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्य को उन्नत अवस्था में लाना, उसका शुद्धिकरण करना, यह है संस्कृति। हम कहते हैं ना, ये सुसंस्कृत व्यक्ति है, मतलब वो जो भी करता है एकदम उन्नत स्तर पे करता है, उसका शुद्ध अच्छी तरह से करता है। तो इस तरह से अगला देखेंगे। हाँ, तो ये कोई पढ़ेंगे? निम्नलिखित है तो जोर से पढ़ोगे, क्या है?
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम संस्कृति को संदर्भित करने के लिए संस्कृति शब्द को समझ सकते हैं, जो हमारे समग्र कल्याण की सुविधा देता है, और विशेष रूप से जो आध्यात्मिक विकास का पोषण करता है।
तो संस्कृति, जैसे मैंने अभी बताया, इसका मतलब क्या है? कि किसी चीज़ को थोड़ा सूक्ष्म करना, उन्नत करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, और सत्व की ओर ले जाना। सत्य से, सत्य में हमको रहना चाहिए, उसे ऊपर भी चलना चाहिए, दिव्य अवस्था तक, भक्ति की अवस्था तक। तो अंततः मतलब संस्कृति, मतलब संस्कृति का अर्थ है वो अवस्था या वो प्रयास या वो जो वो वातावरण जिसके द्वारा हम क्रमशः दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सके। हमें जो वातावरण, जो कार्य, जो पद्धति वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल हो, वो संस्कृति होनी चाहिए। तो वाणी की संस्कृति का मतलब क्या है? कि वो वाणी जो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाए, जो हमको हमारा शुद्धिकरण करे, जो हमको उन्नत अवस्था में लेके आए, उस प्रकार की वाणी। ऐसी भी वाणी होती है जो हमको नीचे गिरा सकती है, जो हमको तमोगुण में ले जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मचारी बनते हैं ना कोई भक्त, हम सब बाहर की दुनिया से तो आए ना, वैकुंठ से टपक के तो नहीं आए कि नहीं, कोई आए ऐसे वैकुंठ से टपक के नहीं आए ना, तो पिछले जन्म से होकर आए तो बहुत सामान लेके आते हैं हम। हमारे पिछले ब्रह्मचारी बनने के पहले का जो पूर्व जीवन है ना, उसमें से बहुत भारी सामान लेके साथ में आते हैं, तो वो सामान अंदर रहता है, बाहर का सामान तो हमने छोड़ दिया है कि नहीं, पैंट वेंट पहनना वो सब छोड़ दिया, ठीक है, वो अंदर का सामान अभी तक नहीं गया, तो वो हमको परेशान करता है। और तो कभी कभी वो हम वो भाषा निकल जाती है, अरे तुरे, कई बार ऐसे हम देखते हैं आश्रम में लोग, अरे यार ऐसे छोड़ो, बोलते हैं यार वार ये सब नहीं, प्रभु बोलो। एवं पुरानी हमारी बोलने की पद्धति है ना, आदत हो गई है ना वो ऐसे बात करके, लेकिन आश्रम के अंदर आने से नहीं, प्रभु तो ये पुराने जो हमको आदत है वो आ जाती है, तो ये क्या होता है, ये यार यार ऐसे करने से फिर वो हमारी एक जो दृष्टि है अन्य लोगों को देखने की आश्रम में वो बदल जाएगी। फिर क्या होगा, अति परिचयात अवज्ञा। लेकिन जब हम देखते हैं, हम प्रभु कहते हैं, तो हमारे मन में भी वो भावना रहती है, ये प्रभु है मेरे, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए, हम वैष्णवों के सेवक हैं। भाषा और मानसिकता इनमें बहुत गहरा संबंध है। संस्कृति जो हमारे गृहस्थ भक्त है ना, खास करके जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और जो विदेश में रहते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, ये लोग बाहर जाके अंग्रेज़ी तो सीखने ही वाले हैं, क्योंकि विदेश में रहते हैं तो अंग्रेज़ी में सब कुछ चलता है उनका, लेकिन घर में मातृभाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि इसमें संस्कृति आती है, भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है। जैसे मैं उनको उदाहरण देता हूँ, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, कन्नड़, जो भी हमारे भारतीय भाषा है, हम जब किसी को संबोधित करते हैं तो हम भेद करते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, ये हमारे उम्र का है, हमारे साथ का है, कि हमसे कोई वरिष्ठ है। तो जैसे मराठी या हिंदी में तू बोलते हैं, फिर तुम बोलते हिंदी में, फिर आप बोलते हैं, एक ही व्यक्ति से कुछ बोलना चाहते हैं तो किसी को बोलेंगे तू, किसी को बोलेंगे तुम, किसी को बोलेंगे आप, लेकिन जिसको आप बोलना चाहिए उसको तुम बोल दिया, जिसको तू बोले तुम बोलो उनको आप बोल दिया, बहुत अच्छा है। हाँ, कभी कई घरों में मैंने देखा है जो माता पिता भी बच्चों को आप कह के बोलते हैं, उनको सिखाते हैं सम्मान कैसे देना चाहिए सबको। प्रभुपाद जी का प्रवचन मैं सुन रहा था थोड़े दिन पहले, वो बोलते थे हमारी भाषा में सम्मान होना चाहिए, वैष्णव तो सबको सम्मान देने के लिए तैयार है, चींटी को भी सम्मान देने के लिए तैयार है। फिर प्रभुपाद जी बोलने लगे कि देखो ये है मेरे शिष्य कीर्तनानंद स्वामी, वो मेरे शिष्य है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको ऐसे अपमानित करके बुलाऊं, मैं भी उनसे बोलता हूँ कीर्तनानंद महाराज, मेरे शिष्य होने के बाद भी मैं उनको सही ढंग से बोलता हूँ, महाराज करके संबोधित करता हूँ। तो उसी तरह से हम जब अन्य से बात करते हैं तो वैष्णव होता है सबको सम्मान देता है। तो इस तरह से जब तू तुम आप हम भेद करते हैं किसको कैसे बात करना चाहिए, पर अंग्रेजी में ऐसे नहीं है। अंग्रेजी में आप राष्ट्रपति को भी बोल रहे हो या किसी छोटे बच्चे को भी बोल रहे हो, क्या बोलेंगे?
यू।
एक शब्द में सब आ गया, यू कॉल के यू ही सब है कि नहीं? कोई भेद नहीं। तो अंग्रेजी में फिर देखते हैं कि ये संस्कृति से संबंधित है, कि वो सम्मान की संस्कृति नहीं है, क्योंकि वो भेद नहीं करते कि किसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए किसको कम। सबको सम्मान देना चाहिए, किंतु सम्मान देने के भी स्तर होते हैं, है ना? कोई लोग होते हैं जिनको ज्यादा सम्मान देना चाहिए। तो ये भाषा में ही नहीं है, उनके भाषा में एक जैसे सबको पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय भाषाओं में भेद है। कोई आप है, मराठी मध्ये म्हणतात ना आपण तुम्ही, आणि सोचेस अरे तू असं कर ना, पण आणि कोणाला जाऊन की आमचे वरिष्ठ आहे त्यांना जाऊन मी म्हणू शकत नाही तुम ऐसे करो ना। आप बोलेंगे, तुम्ही बोलेंगे, आपण बोलेंगे। तो इस तरह से भाषा में देखिए संस्कृति कितनी आ जाती है। तो हम सही भाषा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मानसिकता भी बदल जाएगी, हमारी संस्कृति बदल जाएगी। इसलिए ये यार वार बोलना ये इतना अच्छा नहीं। तो प्रभु 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 बोल बोल के बोल बोल के कम से कम मन में वो विचार आ जाएगा कि ये मेरे प्रभु है, मैं इनका दास हूँ, है ना? इसलिए ये संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब क्या है कि जो हमें उठाएगा, जो हमें शुद्ध करेगा, आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करने में मदद करेगा, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है, वो परिस्थिति, शुद्धिकरण की क्रिया, शुद्धिकरण की अवस्था, शुद्धिकरण का एक वातावरण, इसको हम संस्कृति कहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत कठिन है थोड़ा? समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वाणी और संस्कृति इनका बहुत गहरा संबंध है, और हमें एक ऐसे संस्कृति को तैयार करना है, एक ऐसे वातावरण तैयार करना है जिसमें जो भी हम इस तरह से बोलेंगे, ऐसे चीज़ों को बोलेंगे जिससे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम सब भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। ठीक है? तो अभी संस्कृति के या संबंध में अभी विषय यहाँ पे रोकेंगे, और प्रसाद के बाद फिर वाणी के बारे में चर्चा करेंगे। शायद दोपहर के भोजन के पहले हो सकता है, नहीं हो सकता है, देखेंगे। कोई अभी संस्कृति के विषय में प्रश्न है?
इंग्लिश में शब्द को है इसलिए इंग्लिश में बोलना, फिर बाद में
थोड़ा जोर से सब लोग सुन सके।
हम बोलते हैं कि
इसका कोई उपाय नहीं ना। वो अंदर ही होगा, ठीक। सुविधा के साथ साथ असुविधा भी होती है।
इंग्लिश में हम कहते हैं वॉच योर थॉट्स, बिकॉज थॉट्स विल बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, वर्ड्स विल बिकम एक्शंस, एक्शन वॉच योर।
ये भी बोलो ना कि इतना मुश्किल नहीं है,
आगे कैरेक्टर कल्चर वो सब
सब आ जाएगा।
अपनी विचारों को ध्यान दो क्योंकि विचार ही शब्द बनेंगे। अपनी शब्दों को ध्यान दो क्योंकि शब्द ही कार्य बनेंगे। अपनी कार्यों को ध्यान दो, क्योंकि कार्य ही आदत बनेंगे। अपनी आदतों को ध्यान दो, क्योंकि आदत ही चरित्र चरित्र बनेंगे। चरित्र को ध्यान दो, क्योंकि चरित्र ही संस्कृति बनेगा
और स्वभाव बनेगा। संस्कृति और स्वभाव,
संस्कृति और स्वभाव बनेगा। तो फिर संस्कृति का निर्माण वहां से शुरू होता है,
इधर से शुरू होता है। लेकिन इधर से शुरू होने के लिए संग वैसा चाहिए हमको, है कि नहीं? अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे संग से आएंगे, बराबर। तो जिन लोगों का संग हम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, वो हम ले लेंगे। तो हमारे रहन सहन आदि खान पान के पीछे एक मानसिकता है, ये मानसिकता को बदलनी है। संस्कृति अंततः मानसिकता पर निर्भर है। हमारी मनोवृत्ति कैसे है, जैसे यदि हम समझते हमारी मानसिकता है कि इनको सम्मान देना चाहिए, तो हम आप बोलेंगे, परंतु हमारी मानसिकता ऐसे नहीं है तो सबको तुम ही बोलेंगे। बेलगाम में हमने देखा पहले, अभी भी कई भक्त हमारे हैं जिनको हिंदी नहीं आती अच्छी तरह, तो सबके साथ मेरे साथ भी बात किया, तुम ही बोलते हैं क्योंकि हृदय में कोई गलत बात नहीं है उनकी, कि वो भाषा की जानकारी नहीं है उनको, इतना ही है। तो इस तरह से मानसिकता बहुत जरूरी है, विचार। हाँ, विचार से आया क्या आता है? विचार से आचार, विचार से आचार, आचार नहीं है, विचार से आचार। भक्तानी तेवर लोणचं वगैरे खायचं नाही हा, ते जास्त राजसिक असत ते। तो संस्कृति का मूल है विचार, विचारधारा। इसलिए विचारधारा को ही बदलना है। विचारधारा को बदलने के लिए चाहिए शिक्षण, उपदेश, उसके लिए चाहिए शास्त्र। तो शास्त्रों के आधार पे जब हम ज्ञान का वितरण करते हैं और पालन करते हैं, तो फिर उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एक संस्कृति का निर्माण हम कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, ठीक है। अभी प्रसाद के लिए जाते हैं, फिर प्रसाद के बाद यहाँ सब कृपया आ जाइए, फिर बहुत सी चीजें वाणी के बारे में चर्चा करेंगे।